जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तेषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयानी पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग श्रावक के जीवन में घर गृहस्थी के बीच अपने परिवार का दायित्व निभाते हुए वो अपने जीवन का विकास कैसे करें, इस बात पर जैसा आचार्य भगवंतों ने हमें उपदेश दिया है विचार कर रहे हैं। घर में किसी के यदि आग लग जाए तो वह घर छोड़ करके बाहर की तरफ भागता है। दो बातें उसके मन में हैं। उसने सुन रखा है कि आग जलाती है, कष्टकारी है, उसे छोड़ना, उससे दूर भागना ही श्रेष्ठ है। और दूसरी बात कि घर से बाहर आग नहीं लगी है, उसे ये विश्वास है, घर में लगी हुई है और मुझे आग से बचना है, जहां आग नहीं है वहां तक भागना है। सो आग घर से बाहर नहीं है, ऐसा उसके भीतर विश्वास है। ये दो विचार उसके भीतर आते हैं और वो आग से बचने का उपाय करता है, भागता है। ऐसे ही संसार से यदि संसार में दुख है ये अनुभव होने लगे और कोई स्थान है जहां पहुंच करके कि मैं इस दुख से बचने का उपाय करूं तो पहुंच करके सुख पा सकता हूं, तो व्यक्ति अपने आप दुख से बचने का उपाय करेगा। संसार में दुख है इस बात का गहरा अनुभव भीतर में अगर होता है और कहीं पर सुख है ये एहसास, ये विश्वास अगर होता है तो ही विरक्ति घटित होती है। बाहर से जो हम व्रत नियम अंगीकार करते हैं, धार्मिक क्रियाएं दोहराते हैं, उन सब के पीछे यही सोच है कि संसार में मुझसे दुख सहा नहीं जाता, सो मैं संसार की क्रियाओं में रच परके और संसार नहीं बढ़ाना चाहता। और साथ ही मुझे ये विश्वास हो गया है, ये श्रद्धान हो गया है, सच्चे देवगुरु शास्त्र ने, उनके सानिध्य ने मेरे भीतर ये श्रद्धा पैदा कर दी है कि तुम अनंत शक्ति को प्रकट करके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर सकते हो। ये विश्वास मुझे फिर इंद्रिय सुखों से विरक्त करने में सहायक बन जाता है, वरना मुझे इंद्रिय सुख और भौतिक सुख ही सुख मालूम पड़ते हैं। लेकिन जिसे ये श्रद्धान हो जावे, ये विश्वास हो जावे कि अतींद्रिय सुख भी कुछ है, वही व्यक्ति इंद्रिय सुखों के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति उदासीन हो सकता है। बाहर से व्रत नियम ग्रहण करके हम उदासीनता तो ला सकते हैं, लेकिन अंतरंग में दो बातें बहुत स्पष्ट आनी चाहिए कि इस संसार में अंदर से हमारे विचार आए कि बहुत दुख है। हम अनुभव भी करते हैं, रोज रोज का अनुभव है कि जिस चीज से मैंने माना कि सुख मिलेगा, लेकिन वहां से भी दुख मिलता है। तो इतनी गहरी अनुभूति के बाद भी क्या करें, मेरे ऐसे संस्कार हैं प्रबल कि क्षण भर को मुझे उस दुख का एहसास होता है, लेकिन फिर कहीं और सुख मिलेगा इसी संसार में, सो मेरा सुख भूल करके मैं फिर से रागान्वित होकर के संसार में ही सुखों की खोज करने लगता हूं, और मेरी क्षण भर की विरक्ति गायब हो जाती है, मेरा राग फिर किसी दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है, और वहां सुख पाने की हम लालसा करने लगते हैं, भ्रम पाल लेते हैं, जैसे कि हिरण मरुस्थल में मृग मारीचिका में उलझ करके प्यासा ही प्राण दे देता है, पर पानी की चाह उसकी पूरी नहीं होती। हम दूसरे को भी जीवन के अंत में अतृप्त होकर के प्राण देते देखते हैं, और स्वयं भी सुबह से शाम तक उसी अतृप्ति का भाव लिए संसार में उसकी पूर्ति करने के लिए यहां से वहां भागे फिरते हैं। हमारे जीवन के अनुभव से भी हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि मैंने यहां संसार में सिवाय दुख के और क्या पाया है, और साथ ही जिन्होंने मुझे कृपा करके, उपकार करके मुझे सुख का भी एक स्थान है उसका एहसास दिया है, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। वर्णी जी चले जाते थे, एक जगह उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कुएं के किनारे लेटा हुआ है, सो देखते रहे, देखते देखते वो व्यक्ति लेटा लेटा करवट उसने बदली नींद में, सो कुएं में नीचे गिर गया। अब ज्यादा पानी तो था नहीं, सो डूबा नहीं, आवाज दी सो किसी व्यक्ति ने निकाल लिया। निकालने के बाद वो व्यक्ति उससे पूछता है गिरने वाले से कि काय भैया, जो गिरने वाला था उसने उल्टा बोल गया, गिरने वाले ने जिसने बचाया था उससे पूछा कि काय भैया तुमने हमें बचा काय को लिया, क्या तुम गृहस्थ नहीं हो? कहते अरे ग्रस्त तो हम भी हैं। कहते भैया ग्रस्ती बनाई थी सपने में, सो ज्यादा सा भाई, और तुम कैसे जी रहे हो ग्रस्ती में है? सपने में उसने अपना विवाह और बच्चों को सबको देखा, और जगह कमती हो जाए सबको सोवे को, सो धीरे धीरे खिसके और करवट लई सो गिर पड़े है, और कुछ नहीं। तो उसने सामने वाले ने बचाया तो उससे पूछता है वर्णी जी, देखते हैं सामने बैठे देख रहे हैं कि देखो वो पूछ रहा है कि तुमने मुझे बचाया, क्या तुम गृहस्थ नहीं हो? अरे मैंने गृहस्थी स्वप्न में बसाई, सो मेरी ये दुर्गति हुई तुम कहते हो तुम गृहस्त हो और इतने आराम से जी रहे हो, मुझे आश्चर्य होता है। जिस व्यक्ति को इस चीज का एहसास हो जावे कि यहां सिर्फ दुख है, उससे ही मालूम पड़ेगा। बाकी तो सबको जब मिलते हैं अपन रास्ते में और दूसरे से पूछते हैं कि क्यों कैसा चल रहा, कहते सब बढ़िया है। अब लियो का बढ़िया है नहीं समझ में आता, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये तो कह रहे हैं इनका बढ़िया चल रहा, अपना यहां गड़बड़ चल रहा हो है? चल रहा है सबका दुखमय जीवन, लेकिन हम लोग ऐसा स्वयं एहसास करते हैं और दूसरे को करवाते हैं कि जैसे हम बहुत सुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक भ्रम हम निरंतर पालते हुए अपना जीवन जीते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, दूसरे का चाहे जैसा हो। हम चाहते हैं कि दूसरा हमसे सच बोले भले ही हम उससे झूठ बोले। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे रास्ते में फूल लगावे और हम भले ही उसके रास्ते में कांटे बोवे। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे चाहे हम उसके साथ खोटा व्यवहार करें। हम साहूकार बनाते हैं अपने आप को ताकि दूसरे को निर्धन साबित कर सके। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि दूसरे को अज्ञानी साबित कर सके, और इसी में अपन सुख मानते हैं। मैं ज्ञानी हूं बहुत अच्छी बात है भैया, सुखी होने की बात है, लेकिन दूसरे को अज्ञानी साबित होने के लिए मैं ज्ञानी हुआ हूं, मैंने चार बातें पढ़ी हैं, तो ये तो संसार के दुख का आपने अपने हाथ से इंतजाम कर दिया। आपने अपने आप को साहूकार बनाया कि दूसरे को चोर साबित कर सके, तो आपकी साहूकारी व्यर्थ है। मेरा सुख दूसरे के दुख पर अगर टिका हुआ है तो मेरा दुख मेरा सुख सच्चा नहीं। सुख तो वास्तविक वो है जो कि शास्त्रित है, आत्माश्रित है। अपन को तो जो सुख दुख प्राप्त होता वो सब कर्माधीन है। साता का उदय आया सो सुख, असाता का उदय आया सो दुख। लेकिन अपन उसी को सच्चा सुख दुख मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और अपेक्षा दूसरे से अपने सुखी होने की रखते हैं। ये अपना भ्रम है। कहते जरूर हैं अपन कि संसार में दुख है। कोई से रात को जगा के 12 बजे भी पूछ लो तो अच्छो प्रवचन कर दे, वो संसार की निंदा करेगा बहुत सारी ढेर। लेकिन सवेरे 5:30 बजे नींद खुले सु भक्ता चला जाएगा कहां, मंदिर नहीं दुकान पे। लियो जी दोहरा व्यवहार अपना है। एक तरफ अपन संसार की निंदा करते हो, दूसरी तरफ उसी संसार की चीजें पाने के लिए दौड़ते रहते। अपने शब्दों में तो सुख की कल्पना है, लेकिन अपन स्वयं अपने जीवन में दुख का अनुभव करते रहते हैं। खड़े तो कीचड़ में हैं, गीत गाते हैं कमल के। ऐसा दोहरा व्यवहार होने की वजह से जो संसार की वास्तविकता है वो अपने समझ में नहीं आ पाती। जिसके समझ में आती है वो ऐसा दोहरा व्यवहार नहीं करता, वो समझ जाता है कि नहीं इस संसार में सुख मिलेगा कैसे। मैं व्यर्थ ही प्रयास करूं जैसे कि रेत से कोई तेल निकालना चाहे तो व्यर्थ है उसका प्रयास। ऐसे ही इस संसार से ये बात समझ में आ जावे, त्यागी व्रति होगा, सम्यक दृष्टि होगा, तो उसको जरूर समझ में आ जाएगी। वो संसार के सुखों के पीछे नहीं भागेगा, और संसार में सुख है ऐसा विश्वास नहीं होगा। मेरे आत्मा के भीतर सुख है, मैं संसार से पार होऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा। वो संसार में सुख के इंतजाम करने के लिए अपनी सांसें नहीं लगाएगा, बल्कि संसार से बचने के लिए निरंतर प्रयत्न करेगा। तो आचार्य भगवंतों ने पूरे दिन भर में तीन संध्या कालों में पाप कार्यों से बचकर जो कि संसार बढ़ाने वाले हैं, दुख बढ़ाने वाले हैं, सुख का उपाय करने के लिए तीन संध्याओं में सामायिक का उपदेश दिया, जो तीनों संध्याओं में सामायिक जैसी विधि है वैसी करता है वो तीसरी प्रतिमा का धारी है। अकेले तीन संध्याओं में सामायिक कर लेने का नाम तीसरी प्रतिमा नहीं है। मैं संसार में सुख मानता ही नहीं हूं, इसलिए मैं अपने तीन घंटे संसार के काम से बचा करके वास्तविक सुख की खोज में लगा हुआ हूं, ऐसा उसका सोच है सामायिक के पीछे। नहीं तो सामायिक तो अपन बहुत दोहरा सकते हैं आराम से, तीन नहीं 300 प्रतिमा ले लो, हो तो 11 ही है, ले सकत 300 बाजार मिलती, जयपुर में तो बहुत मिलती प्रतिमाएं। हम आए थे ऐसे ही भाव, तो बहुत पहले छोटे थे हम, तो घर में हल्ला मचा के भाई अपनी दादी ने दो प्रतिमा ले ली, अब हमारे समझ में नहीं आई, हम पूरे घर में देखे आए कहूं नहीं मिली, तो हमने दादी से पूछा कि हमने सुना था कि आपने प्रतिमा नहीं रखी, कहां है आपने, हमें तो बता कैसी है। दादी बहुत हंसी, बोले वो वाली प्रतिमा नहीं है भगवान की, ये तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो व्रत नियम में दृढ़ता पालन करते हैं वो प्रतिमा है। प्रतिमा के समान हमारे भीतर ऐसी स्थिरता आ गई, ऐसा स्थिर भाव आ गया कि हम डमाडोल नहीं होते, इस संसार में सुख है ऐसा नहीं मानते, वरना तो सभी प्राणी क्षण भर को उनके जीवन में दुख आता है तो कोई से पूछ लो तो कहेगा भैया संसार में तो बहुत दुख है, लेकिन जैसे ही कोई ने आकर के थोड़ा उपाय बताया सो फौरन उसमें उलझ करके अपन अपना दुख भूल जाते। कोई के घर में अगर मरण हो जाए, जिनेन्द्र कुमार जी ने लिखा विवर्त नाम के अपने उपन्यास में, शुरुआत करते लिखते हैं वो कि जिनको अभी तक अपना माना था, जिनसे बहुत प्यार था, उन्हीं को फूंक फांक के वापस लौटे, मरण हो गया सो जला करके लौटे थे। थोड़ी देर बाहर बैठा मैं, फिर भीतर आवाज दी बच्चों की मां को कि देखो बच्चे तो भूखे हैं, थोड़ी चाय वगैरह तो बना लो, ये तो संसार है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे तो अपन को क्षण भर को संसार में दुख मालूम पड़ता है, लेकिन अगले क्षण अपन भूल जाते हैं और उसी प्रपंच में फिर लग जाते हैं। और त्यागी वृत्ति निरंतर प्रयत्न करता है सामायिक में इस बात का कि फिर से रचपच न जाऊं, मैं इसी संसार में बड़ी मुश्किल से तो मुझे दृष्टि मिली बचने की, और मेरे भीतर ये जागृति आई, ये भ्रम टूटा कि संसार में सुख है, अब पुनः मैं संसार में सुख न मानने लगूं। मैं तो 24 घंटे में से कम दो दो घड़ी का समय निकाल करके तीन घंटे तो सच्चे सुख की खोज में लगूंगा, संसार में सुख है ऐसा मान करके संसार की तरफ नहीं भागूंगा, संसार के कामों से उपरत हो जाऊंगा, पांच पापों से बच करके पंच परमेश्वरी का स्मरण करूंगा, ऐसा उसके भीतर भाव आता है। चतुरावर्तस्त्रितयस् चतुः प्रणामः स्थितो यथा जाता सामायिको दिन सद्या त्रियोग संध्य मविबंदी। चार दिशाओं में चार आवर्त, चार प्रणाम और चार कायो सर्ग करके दो दिशाओं में जमीन में बैठ करके प्रणाम निवेदित करता है और अपनी सामायिक शुरू करता है। ये सामायिक प्रतिमा धारण करने वाले की बाहरी क्रिया देखने में आती है। चारों दिशाओं में उसने आवर्त किया, अकेला हाथ नहीं हिलाया कि ऐसा हाथ हिला दो हो गया आवर्त, हां भैया मन वचन काय को एकाग्र किया, सो चारों दिशाओं में मैंने अपने मन वचन काय को एकाग्र करने के लिए ताकि उस अंतहीन दिशाओं की यात्रा से मैं बच करके स्थिर हो सकूं। और चार प्रणाम किए किसके लिए, क्योंकि चारों दिशाओं से जो जो केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर इत्यादि ऋषि महर्षि हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए, उन सबको प्रणाम करता हूं। मैं भी उनके जैसा ही बनने के लिए ये प्रक्रिया कर रहा हूं। और चार कायो सर्व करता है कि ज्यादा नहीं तो मैं सभी दिशाओं में खड़े होकर के नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ के उतनी देर के लिए अपने शरीर से मोह छोड़ता हूं, आसक्ति छोड़ता हूं। और दो बार जमीन पर बैठ करके अपनी श्रद्धा और प्रणाम व्यक्त करता है कि सचमुच मुझे इस संसार से बच करके सच्चे सुख को पाना है। जिन्होंने सच्चा सुख पा लिया है उनके लिए जमीन पर माथा टेक कर मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रक्रिया के पीछे ये उद्देश्य था, सो प्रक्रिया तो अपने हाथ में रह गई कि चार बार ऐसे घुमाओ चारों दिशाओं में और जल्दी जल्दी चार कायो सर के बैठ जाओ, प्रणाम कर लो, खत्म। सामायिक शुरू 48 मिनट का, कन्ने माला पहनने 48 मिनट जैसे तैसे निकले होगा, ये टाइम अब चले। अपन बाहरी प्रक्रिया भर रह गई, अंतरंग के परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं आया। 48 मिनट के बाद भी वैसा ही व्यवहार जो कि 48 मिनट तक अपन ने सामायिक करके और अपने विचारों को संभाला था, फिर उसी संसार में रचपच जाते हैं अपन, अकेली बाह्य क्रिया दोहरा लेते हैं। बहुत लोगों को देखा, बुरा नहीं मानना, अपने को संभालने के लिए है कि अगर हम तीसरी प्रतिमा धारण करते हैं तो कहे के लिए, उद्देश्य क्या है, ताकि मैं 3 घंटे इस तरह से अपने भ्रम को तोड़ूं कि पुनः इस संसार के भ्रम में मैं फिर से ना फंस जाऊं। लेकिन होता तो यह है कि क्रिया दोहरा ली जाती है और भ्रम फिर से उसी भ्रम को अपनाने के लिए अपन उत्सुक हो जाते हैं। भाई, अपन को ऐसी सामायिक जिसमें कि अपन विचार करें संसार के स्वरूप का कि अशरण है, सोचते हैं कि यहां शरण मिलेगी, धन पैसे होंगे तो सुरक्षा हो जाएगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, चार आदमी रहेंगे तो हमारी रक्षा कर लेंगे। नाना प्रकार से इस संसार में मैं शरण की आकांक्षा करता हूं, लेकिन शरण नहीं मिलती और मुझे जीवन के अंत में अपने प्राण जब छोड़ना पड़ते हैं तो सब असहाय खड़े हो जाते हैं। जिनको मैं शरण मान रहा था वे भी नहीं बचा पाते। बड़ा आज्ञाकारी पुत्र भी हो तो मरण के समय पिता उसे अपनी सांस नहीं दे सकते। मैंने कई बार कहा कि कितना भी अपना किसी से प्रेम हो, वे उस पे आई हुई विपत्ति को अपन 1 डिग्री कम नहीं कर सकते। वो विपत्ति तो दुख तो उसे ही भोगना पड़ेगा। ये संसार के अशरण की भावना अपने भीतर बहुत प्रगाढ़ आ जावे कि सचमुच यहां तो शरण संसार की लेने लायक नहीं है और अत्यंत अशुभ है। बहेलिया ने आकर के जैसे जाल बिछाया और दाने डाले, पक्षियों ने सोची के दाने खाएंगे लेकिन जाल में फंस गए। ऐसे ही यहां पर जिन जिन चीजों में मुझे थोड़ा सा सुख दिखाई पड़ता है उसी तरफ दौड़ता हूं और फंस जाता हूं। जैसे कि डोरी में मांस का टुकड़ा बांध करके मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता है, सो उस मांस की लोलुपता में कांटा फंस जाता है और मछली के प्राणांत हो जाते हैं। लेकिन उसकी अज्ञानता पर तो हमें हंसी आती है कि बताओ, इतना समझदारी नहीं उसकी भी, तो संगी पंचेंद्री है। और अपन संगी पंचेंद्री है, अपने दीवानेपन और अपने भ्रम पर अपन को जरा भी भीतर में रोना नहीं आता कि हम भी तो ऐसे ही कांटा हमारे मुंह में भी फंसता चला जा रहा है संसार का। हम संसार में ही सुख मान करके और इंतजाम करने में लगे अपने सुखों का, जबकि यहां तो सवाल ही नहीं है, अत्यंत अशुभ है। जितना इंतजाम करते हैं वो सब मुझे फंसाने के लिए कारण बनता है। अनित्य है, कांच की चीज ला करके घर में रखते हैं कि चल है कछु दिना। कई जने तो जा सोचत के जब तक अपन जिंदा रहे जब तक जो गिलास चल है कांच को, ये भैया कांच को है कौन, उनको धक्का लगे नीचे गिरे वो टूट जाए, और उसके बाद अपने को रोना पड़ेगा अगर हमने कांच के गिलास की तासीर नहीं समझी है तो। और अगर हमने उसकी वास्तविकता समझ ली कि कांच की तासीर ये है, उसकी नजाकत ये है कि वो गिरे और टूट करके नष्ट हो जाए, पत्थर थोड़ी है कांच है, अगर ऐसा भाव भीतर आ जाए लेते समय ही कांच का सामान के एक दिन तो ये भी टूट जाएगा, मैं कितना भी संभालूं, तो उसके टूटने पर हर्ष विषाद की भावना आएगी नहीं। अगर वास्तव में हमें संसार से विरक्ति हुई है तो रामकृष्ण परमहंस के मरण का समय था और उनकी जीवन साथी बहुत अधिक रोने लगी, तो रामकृष्ण ने कहा कि सुनो, अगर तुमने इस शरीर को रामकृष्ण माना है तो रो लो, ये तो मरने वाला है, और अगर इसके भीतर बैठा रामकृष्ण मैं मरण से प्रभावित नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं, अगर ये मानती हो तो रोना बंद करो, मैं नहीं मरूंगा, देह मरेगी, तुम अपने भ्रम को तोड़ो। ऐसे बहुत सारे भ्रम हमारे भीतर हैं, हम जल्दी से हर्ष विषाद में पड़ जाते हैं, जो चीजें अनित्य हैं उनको भी नित्य मान लेते हैं, और जो चीज वास्तव में नित्य है शाश्वत है उस आत्मा की फिक्र नहीं करते। 24 घंटे में 5 मिनट भी अपने आत्मा के स्वरूप के विचार के लिए नहीं है मेरे पास, है किसी के पास? हाथ ऊपर करो, सामायिक करक देवर छोड़ के त्यागी वृत्ति, बाकी तो संसार का गुणा भाग हिसाब लगा हुआ है, 24 घंटे संसार का काम लगा, कोई दिन छुट्टी का है कि आज हमें संसार को कोनो काम नहीं है? अरे छुट्टी के बिना तो और ज्यादा है, ऑफिस से सुस्ती है तो घर को काम कर ली, में जो डरो बहुत दिना से हफ्ता भर को डरो, और विस्तार लिया, किसी कैलेंडर में लिखा है कि आज के संसार की काम की छुट्टी, लाल निशान लगो, रात कछु नहीं करने, खाने भी नहीं है, बनाने भी नहीं है, न कोई को खिलाने आए, घर का काम ही नहीं करना, ऐसा है कोई दिन? 24 घंटे और 365 दिन लगे हुए हैं उसी सांसारिक कार्यों में, 5 मिनट का समय अपने कल्याण की बात सोचने के लिए नहीं है, ये तो उपदेश सुनने के लिए, चलो महाराज जी आए हैं सो उपदेश सुन लो, सो बैठ जाते हैं, वास्तव में देखें कि मेरे भीतर उस उपदेश सुनने की ललक और उस उपदेश को ग्रहण करने की कितनी ललक है। वास्तव में इन कानों से नहीं सुनाया जाता, सुना जाता हृदय से सुना जाता है तो ग्रहण बहुत आसानी से हो जाता है, और अगर ग्रहण नहीं हो रहा है तो समझना कि हमने सिर्फ कान से सुना है, अभी हृदय से नहीं सुना। जो तीसरी प्रतिमा को धारण करने वाला है वो सुनी हुई जिनवाणी को ग्रहण करता है और अपने आचरण में उसको तब्दील करता है। दुख रूप है संसार, सब जानते हैं, लेकिन कितने इंतजाम करते हैं दुख के ही, किस वजह से? अज्ञानतावश। सो सामायिक में अपन इसी सब चीजों का तो विचार करें कि देखो मैं जिन चीजों में सुख मानता हूं वहां पर भी दुख है, अब तो ये मेरा विचार बिल्कुल निश्चित हो गया कि यहां संसार में दुख ही दुख है। ऐसा अगर सामायिक के समय अपने मन में विचार दृढ़ होता है तो तीसरी प्रतिमा और सामायिक सार्थक है, वरना जैसे सामायिक के पहले हते सामायिक के बाद उठे सो ज्यों के त्यों। सामायिक तो समता की साधना है, क्रोध से मैत्री की तरफ जाने की साधना है, मान कषाय से विनय का अभ्यास करने की साधना है, मायाचारी छल कपट छोड़ करके सरल होने की साधना है, लोभ छोड़ करके संतोष धारण करने की, भ्रम तोड़ करके सत्य को जानने की साधना है, कि अपन ने करना चाहिए। थोड़ा सा समय अपने 24 घंटे में 5 मिनट का ऐसा भी निकालना चाहिए कि ये सब भी तो मैं कर सकूं। गुस्सा तो कितना करता हूं, अहंकार तो मेरे भीतर कितना है, छल कपट तो कितना है, लोभ लालच कितना है, मैं कुछ अपने जीवन में बदलाव करना चाहता हूं। जिन चीजों को कि मैं पसंद करता हूं, कौन नहीं पसंद करता कि कोई हमें क्षमा कर देवे हमारी गलतियों को, लेकिन मैं दूसरे की गलती देख करके क्रोधी हो जाता हूं। दूसरे को माला पहनते देख करके अपन को कहते के देखो तो इनको कितनी मान कसा है, और अपने घर में माला पहनावे को तो अपन होनी है मान कसा है। अब जा बता है कितना अंतर। किसी के साथ अपन छल कपट करें तो नहीं समझ में आता, कोई अपने साथ छल कपट करे तो कह देखो कितने छल कपट करते हैं। दूसरे को लोभ लालच में पड़ा हुआ देखकर अपने को अच्छा नहीं मालूम पड़ता, और अपन लोभ लालच में पड़े रहें तो बताइए अच्छा है कि बुरा है। ऐसा विचार, अकेला विचार कैसे ऐसा आसान नहीं, ऐसा विचार ही आ जाए कि ठीक तो है, मैंने व्यर्थ ही क्रोध किया, मैं तो सामने वाले के प्रति क्षमा भाव धारण करता हूं, ऐसा विचार सामने आ जावे तब तो सामायिक सफल हुई। मैंने आज जिस जिस के साथ छल कपट किया है मैं तो जाकर हाथ जोड़ लूंगा कि भाई मेरी चतुराई माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ छल किया। अरे आज के समय में तो अपन अपने छल की वजह से सच्चे देवगुरु शास्त्र के साथ भी छल कपट कर लेते हैं और पता नहीं लगता। बहुत देखा मैंने, लोग सोचते हैं कि का समझे महाराज जी तो बुद्धू हैं, हम कर लो चालाकी उनके संगे, तो भैया हमें लगने लगता हंसी आ जाती भीतर के तुम्हारी चालाकी से हमारा कछु नहीं बिगड़वा रहे, तुम अपना खोट अपना आयत कर रहे हो चालाकी करके, तुम्हारे भीतर जो चालाकी के परिणाम है वो तुम्हारा आयत करेंगे। लेकिन क्या करें, संस्कारवश जैसे कि चोर चोरी छोड़ देवे लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता, ऐसे ही अपने भीतर के संस्कार जोर मारते हैं मुनि महाराज के प्रति भी, साधु जनों के प्रति भी, जिनवाणी के प्रति भी, देव के प्रोगनी सप्रोधार कर दो अपन तो सब ठीक है। ये छल है कि नहीं, अपन जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन इसके बाद भी जो पूजा में शुद्धि रखना चाहिए, जो हार के समय शुद्धि रखनी चाहिए, जो जिनवाणी के अध्ययन करके मुझे अपनी कषायें कम करनी चाहिए, मैंने नहीं किया तो मैंने इन सब के प्रति छल ही तो किया। अपन इस तरह से विचार करें सामायिक में और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। सामायिक तो अपने स्वभाव को अपने व्यवहार को बदलने के लिए ही की जाती, अपनी आदतों को बदलने के लिए ही, अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करके अपने भीतर अच्छा सोच आवे इस तरह की। वर्षों सामायिक करते गुजर गई लेकिन अपने भीतर नकारात्मक सोच अगर आता है तो समझना अभी साधना और करनी, अभी अपने सोच को सकारात्मक बनाना है। कोई भी चीज सामने दिखाई पड़ी उसके गलत पहलू की तरफ पहले ध्यान चला जाता जबकि उसमें अच्छाई भी है, वो अपने को नहीं दिखाई पड़ती है, ये अपनी कमी है। हमें फौरन इसको सुधारने का इंतजाम करना चाहिए कि मैं तो इतनी सामायिक करता हूं, देखता क्या हूं, दूसरे के भीतर जो अशुभ है वो देखता हूं, मेरी दृष्टि मुझे ठीक करना पड़ेगी, दूसरे के भीतर जो अच्छा है वो दिखाई पड़े। बच्चे ने मां को धक्का दे दिया, मां ये नहीं देखती कि मुझे धक्का दे दिया, बच्चे ने धक्का दे करके अपना प्रेम कैसे व्यक्त किया मेरे से, देखो कैसी पॉजिटिव सोच है। और अगर वही बच्चा दूसरे को धक्का दे देते तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा देखो तुमने अपने लड़का को कैसे सिखाओ, जो धक्का दे वो सीख वो, उसने तो रोज मां को धक्का दिया, उसकी मां ने कभी नहीं कहा कि तुम धक्का देते हो। सोच की बात, ऐसे छोटे छोटे तो अपन जहां अपना मुंह रहता वहां पर तो अपन पॉजिटिव सोच रखते हैं, और जहां अपना देश भाव रहता है अपने मन का नहीं होता वहां पर नकारात्मक सोच रखते हैं और अपना ही अहित करते हैं। नकारात्मक सोच रखने से दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, कितना नकारात्मक सोच रखा था रावण ने, राम का बिगाड़ पाए कुछ, 17 बार कह चुका मैं, ये बात अपने भीतर धस जाना चाहिए भीतर कहीं के, बात तो सही है, मैं पढ़ता भर हूं, पर मुझे अपने विचार सामायिक में इसी तरह सुधारना चाहिए, ये त्यागी वृत्ति के भीतर भाव अगर आ जावे तो सामायिक सार्थक हो गई। एक बार की छोटी सी घटना है, जब तक अपने को स्वयं एहसास नहीं होगा तब तक भैया हम कितव के तरह में को और आन के जाए कछु नहीं होने, जाने समझियो कि हम आपके लिए कोई लाना दे रहे हैं, हमारी आदत में नहीं है, हमें क्या करना, आपको जैसा करना वैसा करो। लेकिन महाराज जी भी कई बार गुस्से में आकर के कई चीज कह देते, काय के लिए, हित के लिए। आचार्य भगवंतों ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया अपने को मुनि महाराज तक को मूर्ख कह दिया, काय के लिए, ताकि तुम ज्ञानवान बनो, मूर्ख ही नहीं रहे, तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञानवान होने का है, अपने स्वभाव को पहचानो इसके लिए। लेकिन जब तक अपने भीतर अनुभूति ना हो, एहसास ना हो, तब तक नहीं हो सकता ये सामायिक, उसी अंतरंग एहसास के लिए है। कहने सुनने से तो अपन सब चीजें जानते हैं, लेकिन अपने अंतरंग के अनुभव से वो चीज निकल करके आवे। मुश्किल में पड़ गई उनकी जीवन साथी कि अब खाने पीने का इंतजाम आगे कैसे होगा, सो उनको ध्यान आया कि जौहरी जी का एक दोस्त था, वो भी जौहरी था, तो अपने बेटे से कहा कि जाओ कुछ रत्न रखे हुए हैं, सो जौहरी जी के जो मित्र हैं उनको दे करके आओ, वे इसका सही दाम दे देंगे, सो तुम ले आना और अपनी आजीविका के लिए अपन उपाय कर लेंगे। ऐसा कह करके बेटे को रत्न सौंप करके और भेजा मित्र के पास, तो मित्र ने जैसे ही रत्न देखे समझ गया, कहा बेटे रत्न तो तुम तिजोरी में जाके रख दो, तुम्हारे पिता मेरे भी मित्र थे, मैं विपत्ति में सहायता ना करूं तुम्हारी तो मेरे मित्र होने का क्या अर्थ हुआ। सो रत्न वापस कर दिए और कहा कि सुनो तुम मेरी दुकान पर काम करने लगो, रत्नों को परखने की विद्या तुम भी सीख लो, इतना मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूं। सो साल दो साल में वो रत्नों को परखने में निष्णात हो गया, अब कौन से नकली हैं कौन से असली हैं उसकी आंख में देखते ही साथ भान हो जाता है कि ये असली है ये नकली। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जोन पिताजी रत्न छोड़ गए थे, जोन हम अपने मित्र के उनके मित्र को देने गए थे और उनने कहा था कि रख लो तिजोरी में, देखें तो के कितने कीमती हैं वे रत्न। सो उसने मां से चाबी लेकर तिजोरी में से वे जो रत्न थे निकाले, सो जब उनको देखा सो लगा कि अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, फेंकने लायक, मैं बेकार में तिजोरी में धरे हूं। सो उसने मां से कहा कि मां जिनको अपन रत्न समझ रहे थे ये तो कांच के टुकड़े हैं, ये रत्न नहीं है, लेकिन पिताजी की मित्र होते हुए भी उन्होंने अपन को पहले नहीं बताया, बताओ। भागा भागा रत्न लेकर के पिताजी के मित्र के पास पहुंचा, उस जौहरी के पास, और कहा कि आपने मुझे पहले ही कह दिया होता तो काहे को इतने दिन तक ये रत्न रखे रहता। मित्र ने कहा कि देखो तुम तो उस समय विपत्ति में थे, और अगर मैं कह देता कि तुम्हारे रत्न खोटे हैं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तुम यही समझते कि आज मैं विपत्ति में हूं तो मेरे रत्न हड़पना चाहते हैं, इसलिए खोटे बता रहे हैं। अब तुम स्वयं पार की हो गए, अब तुमने स्वयं परख लिए। आचार्य भगवंतों ने भी परख करके इस संसार में सुख नहीं है ये बात कही है, अपन अपने जीवन में उसको परख करके देख ले तो विश्वास जमेगा, बाकी तो नहीं, हमें तो बहुत सुख है। अपने मन में ये आ जाएगा कि लिखी हुई है ग्रंथों में कि बहुत दुख है, हमें तो नहीं लगो अभी तक, बहुत अच्छो सब अच्छी से चल रहा हमारा, तो ऐसा भाव आ जाता अपने मन में। लेकिन जिस समय अनुभव होता है तब वास्तविकता मालूम पड़ती है। अपन को सामायिक में ऐसे ही अभ्यास करने के लिए रखा गया है कि तीन संध्या कालों में सामायिक व्रत का पालन करे और ऐसा विचार करे कि भले ही सुबह से शाम तक मैं उसी सांसारिक सुख को पाने की कोशिश में लगा रहता हूं, पर वास्तव में वो सांसारिक सुख सच्चा नहीं है। मुझे तो उस आत्मिक सुख को पाने की कोशिश करनी है और घर गृहस्थी को अपना कर्तव्य मान करके अपना निर्वाह करना है, इसमें रचना पचना नहीं है। ऐसा अगर प्रतिमाधारी विचार करे तो उसकी प्रतिमाएं उसके लिए कल्याणकारी हैं, और इतना ही नहीं, आसपास जो लोग उस प्रतिमाधारी को देखते हैं उन्हें भी दिशा मिलती है। प्रतिमाधारी को देख करके अपने भीतर सम्मान ही उत्पन्न नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसकी बाह्य क्रिया को देख करके, उसके अंतरंग के परिणामों को देख करके दिखी जाते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम स्वयं अपने जीवन में ऐसे अंतरंग भावों की निर्मलता के साथ व्रत नियम अंगीकार करें, जिससे अपना भी कल्याण होवे और प्राणी मात्र भी उससे शिक्षा दे करके अपना कल्याण कर सके। इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। ए गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
रच पच का गाफिल निद्रा में सोता हूं,
अथवा पता किया मंत्रियों ने, तो पता करने पर मालूम पड़ा कि चंदन के व्यापारी की दुकान है। ये तो ठीक है, लेकिन चंदन का व्यापारी निरंतर सुबह से शाम तक अपने चंदन बिक जावे इसकी चिंता में राजा के मरण का विचार करता है। कहा किसी से नहीं है, सिर्फ विचार किया है खोटा। उस खोटे विचार का भी इतना प्रभाव संसार में पड़ता है, और वो खोटा विचार संसार पर जो प्रभाव डाले सो डाले, मेरे अपने आत्मा में कर्म बंध कितना करता होगा, ये विचार करो। राजा साहब के मन में उस व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स की वजह से, अशुभ विचार की वजह से अशुभ विचार आ गया उसके बारे में भी, तो राजा ने उपाय सोचा कि कोई बात नहीं, उसका चंदन बिक जाएगा तो फिर उसके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा। तो राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जितना चंदन उसने मंगा करके अपनी दुकान में रखा है सारा राजकोष से खरीद लिया जाए। तो जैसे ही सारा चंदन उस व्यापारी का राजा ने खरीद लिया, और क्या चाहता था वो व्यापारी, चाहे राजा मरे चाहे नहीं मरे, हमारा चंदन बिक जाए। अब देखो, अब राजा बहुत अच्छा है, राजा ने अपने राजकोष से मेरा सारा चंदन खरीद लिया। अब राजा की प्रशंसा करने लगा वो, अब राजा वहां से रोज निकलते, अब उनके भीतर वैसा मिथ्या विचार नहीं आता, बल्कि उस व्यापारी के बारे में अच्छा ही विचार आने। भैया, एक दूसरे के द्वारा किया गया राग द्वेष एक दूसरे को प्रभावित तो करता ही है, और अपने जीवन को पतन की तरफ, कर्मबंध की तरफ कितना ले जाता होगा, ये तो विचार करें। अपने अच्छी और सही विचार दूसरे को प्रभावित करते हैं और दूसरे के राग द्वेष में कारण बन जाते हैं। इस संसार में सभी लोग एक दूसरे के राग द्वेष में कारण बनते हैं। उपादान तो मेरा अपना स्वयं का है, मैं राग द्वेष कर लेता हूं। देखो, राजा के बारे में बुरा विचार करने के बाद भी राजा ने बुरा विचार नहीं किया उसका बिगाड़ करने का। हम अपने राग द्वेष के परिणामों को चाहें तो स्वयं जीत सकते हैं। कोई हमारा शत्रु हो सकता है, हम किसी से शत्रुता करें न करें, जी हमारी चॉइस। कोई हमसे शत्रुता रख सकता है, ये उसकी चॉइस। हम इस तरह अगर अपने मन में विचार कर लें और अपने राग द्वेष के संबंधों को धीरे धीरे सीमित करते जावें और प्राणी मात्र के कल्याण का भाव अपने जीवन में हो, तो अपना जीवन का कल्याण हो और अपने निमित्त से सारे संसार का कल्याण करने का जो भाव है, सो कल्याण होवे चाहे न होवे, लेकिन भाई अच्छे विचार से प्रभाव तो पड़ता ही। किसी का अच्छा सोचो तो अपना अच्छा तो होगा ही, उसका भी अगर बुरा होता होगा तो उसका भी अच्छा होगा। आचार्य श्री हमेशा उदाहरण देते हैं किसान का, कि किसान सोचता है कि पानी गिरे कहां गिरे, अपने खेत में नहीं, इतना स्वार्थी नहीं है, सब दूर पानी गिरे, सो सब दूर जब गिरेगा तो मेरे खेत में भी गिरेगा, और जब फसल काटेगा तो मैंने तो सबके यहां पानी गिरे ये सोचा था, इसलिए मैं सबकी फसल काटूंगा। हां, अपने खेत की काट लो, मैं सबके कल्याण का विचार करूं तब भी मेरा कल्याण होगा, सबके कल्याण में मेरा कल्याण निहित है, ऐसा विचार अपने भीतर आवे तो अपना राग द्वेष कम हो सकता है। और मोह एक प्रकार की मूर्छा है, नशा है। कितने प्रकार के नशे हैं, किसी को पद प्रतिष्ठा का नशा है, किसी को धन संपत्ति का नशा है, किसी को अपनी बहुत अच्छी संतान है उसका नशा है, पित्तेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, कितने प्रकार की ऐष्णाएं, कितने प्रकार की आकांक्षाएं और मोह अपने भीतर है। आचारी भगवंतों ने उस सबको तीन में बांट दिया कि कोई भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसको पुत्र की आकांक्षा ना हो, जिसको धन संपत्ति की आकांक्षा ना हो, जिसको लोक में यश और ख्याति की आकांक्षा ना हो, बहुत मुश्किल है। यह मोह ही तो है जो कि मुझे इस प्रकार की आकांक्षाएं और इच्छाओं में डालता है। मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूं कि अरे मेरा स्वभाव तो वीतरागता है, मैं कहां इस छोटे छोटे से पद प्रतिष्ठा में पड़ा हूं, मेरी प्रतिष्ठा तो अपने आप में स्थित होने पर परम पद को प्राप्त करने में है, मेरी संपत्ति तो जिनेंद्र भगवान के जैसे गुण हैं वैसे प्राप्त करूं तो मैं संपत्तिवान हूं, यहां दो दो पैसे की संपत्ति में मैं सुख मान रहा हूं। और पुत्र जिसके लिए मैं आकांक्षा करता हूं बिगड़ जाए तो दुखी होता हूं, वास्तव में मैं पुत्रवान तो तब कहलाऊंगा जबकि मैं स्वयं ही अपनी ऊर्जा को अपने कल्याण में लगाऊं, मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊं जो कि सबके लिए कल्याण में निमित्त बन सके। पुत्र वही है जो पुत्रोचित कार्य करे, तो मैं इस प्रकार का कार्य करूं जो कि मेरे लिए उचित है, तो ही मेरी आकांक्षा संसार से अपने आप घट जाएगी। सांसारिक चीजों की अपेक्षा मैं इस तरह की आकांक्षा करूंगा। भैया, मोह तो इतना जबरदस्त है, नशा तो इतना बड़ा है, उसके ऊपर से और नशा भी करते लोग। देखो, एक तो वैसा ही नशा है और ऊपर से शराब पी लें तो और नशा, मोह का नशा और उसके ऊपर से और नशा, उसी मोह के नशे की वजह से, व्यसनों की वजह से। एक व्यक्ति को अपने धन संपत्ति का बड़ा नशा था, बहुत अरबपति था, उसके मरण का समय निश्चित आ गया, मरना सबको पड़ता है, धनवान हो वे चाहे दरिद्री हो वे, अपन ने चर्चा करी थी। तो उसका भी मरण का समय निकट आ गया, एक उसका मित्र था, तो उसने कहा कि अब तो तुम्हारा मरण निश्चित आ गया, तुम जीवन भर बहुत संतुष्ट होकर के तृप्ति से जिए। उसने कहा काहे की तृप्ति, हमने सोचा था कि 20 अरब रुपया वो 100 अरब रुपए छोड़कर के मरूंगा, 20 अरब छोड़ के मर रहा हूं, अब बताओ। माने इतनी लिप्सा धनम के प्रति, छोड़ के मर रहे हैं इसका भी काउंट कर रहे हैं कितने छोड़ के मर रहे थे, हमने सोची थी कि इतने छोड़ के मर है। उसी समय उसके मन में आखिरी में यह भी आया कि अपने सेक्रेटरी से पूछ ले, बहुत दिन से विचार था तो अपने सेक्रेटरी से पूछा कि भाई जीवन भर में सोचता रहा तुमने मेरी बहुत नौकरी करी, मेरे मन में ये विचार आता था कि तुमसे पूछ लूं कि अगर कदाचित ईश्वर तुमसे पूछे कि तुम धनवान बनना चाहते हुए धनवान के सेक्रेटरी, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। तो सेक्रेटरी ने कहा कि मैं तो ईश्वर से कहूंगा कि मैं सेक्रेटरी ही ठीक हूं, मुझे धनवान नहीं बनना। अब धनवान बड़ा चकित हुआ, उसने कहा अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि तुम धनवान बनने का निर्णय लोगे। उसने कहा नहीं, मैंने जीवन भर आपके यहां काम किया और आपको देखता रहा, इतनी धन संपदा के बीच आपने कितनी चिंता और दुख में अपना जीवन व्यतीत किया, मैं नहीं करना चाहता, मैं तो आपका नौकर ही सही हूं, मैं धनवान नहीं बनना चाहता। भाई अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसी मोह के नशे में और निरंतर अपने रोग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिस रोग को कम करने के लिए हमने डॉक्टर की सलाह ली थी, उसने बता भी दिया था कि राग द्वेष मोह जैसे कि नोन तिल खटाई न खाइयो तो ठीक हो जाए, ऐसी कहने लगे डॉक्टर साहब हैं। तो भैया जो तीनों चीजें ऐसी हैं, अपने रोग को ठीक करना हो तो ये तीन चीजें न करें अपन, लेकिन उससे बच नहीं पाते तो क्या करें सावक। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने वीतराग स्वभाव की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी में रह करके समझ लिया कि राग द्वेष मोह से बड़ा कठिन है बचना, तो फिर उपाय भी बता दिया आचार्य भगवंतों ने, क्रम क्रम से प्रतिमाएं धारण करके अपने राग द्वेष मोह का समय कम करते चले जाते हैं, अवसर ही ना आए। सो हमने अनुव्रत गुणव्रत और शिक्षा व्रत को धारण करके अपने आप को सजग और सावधान बना लिया। सो वर्षों वर्षों किसी से अपना झगड़ा चलता था, अब तो व्रती हो गए, क्या करने अपन को, अपनी कषाय ज्यादा से ज्यादा 14 को अपन ने प्रतिपण कर लो, हो भैया तुम अपनो तुम जानो। ज्यादा से ज्यादा व्रती व्यक्ति होगा तो कितने देर का राग द्वेष, 15 दिन का, 15 दिन के बाद चलेगा अगर तो अब प्रत्याख्यान आ गई, और 6 महीना के बाद चलेगा अगर केस चल रहा है 2-2 साल से तो सिवाय अनंतानुबंधी के और मिथ्यात्व के कुछ नहीं है, आप विचार कर लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवंतों का है, नहीं तो कह लो कि महाराज जी कह रहे थे कि हम केस लड़ रहे तो हमारे मिथ्यात्व और लो और नाटक हो जाए, अब भाई जैसे तैसे तो 2 महीना ने कार पाए, हाँ और कछु हो जाओ उपद्रव। हाँ नहीं देखो भाई बहुत डर लगने लगा आप तो, कि नहीं सही बात है, ये एरिया ही वैसा है, एरिया डर के ही रहने का है यहां पर। तो अपन विचार करें कि हम किस प्रकार अपने राग द्वेष मोह का पोषण करते चले जा रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं कि इससे हमारा ही अहित होगा। तो आचार्य भगवान व्रतों को धारण करवा के कहते कि ठीक है तुम राग द्वेष मोह से नहीं बच पा रहे तो तुम व्रत पालन करो, सजग और सावधान रहो, जैसे ही राग द्वेष मोह होने लगे तो उसका ड्यूरेशन तो कम कर लो, 2-2, 4-4 दिन तक तो न लड़ो, कषाय अल्प समय के लिए हो जाए जो कि बहुत चिरकाल तक चलती रहती थी, इतना तो कर सकते, कषाय नहीं जा पाएगी चलो कोई बात नहीं, बच्चों जैसा कर लो कि थोड़ी देर पहले 5 मिनट ऐसे लड़े के देखे वालों तो देख के कहे कि अब तो कहो जिंदगी भर ने बोले इतनी लड़ाई हो गई, और अगले 5 मिनट बाद 2 जने गरी में हाथ डारे भी घूम रहे होते, अब बताओ लग तो ये रहा था कि अपने बोलेंगे, और अपन किसी से तन्नक ऊंची नीची हो जाए 2 बातें हो जाए तो कहो महीनों ने बोले, इतनी गांठ बांध लेंगे अपन। यही अपने जीवन से अलग कर सके अपन तो आचार्य भगवंत कहते कि त्यागी व्रती तो कम से कम सजग सावधान रह करके जैसे ही राग द्वेष और मोह के मौके आवे और हो ही जाए राग द्वेष, तो भैया उसके समय को कमती कर लो, ज्यादा देर तक नहीं कर। फिर इतना तो अपन कर सकते, सो आगे और धीरे से आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसा करो कि दिन भर में घंटा घंटा भर तीन बार निकालो कि बैठ के शांति से प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाव और तमाम विषमताओं के बीच घर गृहस्थी के समता का अभ्यास करो। सो अपन ने तीसरे प्रतिमा को धारण करके तीन संध्याओं में मैं प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करूं और समता भाव धारण करूं। हैं तो सुख दुख संसार में बहुत, हैं तो विषमताएं बहुत, लेकिन मैं घंटे भर बैठ करके और समता का अभ्यास करूं, राग द्वेष से बचने का यही उपाय है। तो तीसरी प्रतिमा में अपने राग द्वेष को कम से कम सामायिक के समय कम कर लेता है, ऐसा अभ्यास घर गृहस्थी में रह करके श्रावक भी करता है। और फिर आचार्य भगवंत और आगे बढ़ने के लिए कहते कि ऐसा करो कि अष्टमी चतुर्दशी जो महीने भर में दो दो आती हैं, सो चार दिन पूरे के पूरे, अभी तो रोज एक एक घंटे बच पाता था, अब तो पूरा का पूरा दिन निकालो धर्म ध्यान में, सामायिक करो और खूब धर्मामृत का पालन करो, धर्मामृत को पान करो और साथ में उपवास भी करो। चार प्रकार के आहारों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ो और चार प्रकार की जो कषाय है उसको मंद करो। इतना ही नहीं, अपने आत्मा के निकट वास करो। उपवास के तीन अर्थ हैं। अपन तो सिर्फ चार प्रकार के भोजन को और घर गृहस्थी को सबरों काम करते रहते हैं, भोजन छोड़ के सुखा भाव। नहीं भाई, चार प्रकार के भोजन का त्याग और चार प्रकार की कषाय भाव मेरे भीतर मंद रहें, आज के दिन तो मैं ऐसा अभ्यास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं धर्मामृत का पान करूं और अपने आत्मा के स्वभाव का विचार करूं। पूरे दिन, चार दिन ऐसे निकल जाएं। बुंदेलखंड में तो पर्व को पावन का दिन कहते, त्योहार को। सो भैया, ये अष्टमी चतुर्दशी पावन के दिन तो है ही, कि जिसमें हम राग द्वेष की गांठों के बीच में और इस दिन को बचा करके वीतरागता का अनुभव कर देते, सो ही वो दिन पवित्र हो गया। जितने दिन और रात राग द्वेष से बच करके बीते हैं वे सब पवित्र हो गए। सो ऐसा श्रावक के लिए उपदेश दे दिया आध्यात्मिक विकास करने के लिए, वो प्रयत्न करे, अपने विचारों को बदले। सामायिक में करते क्या है, मैं तो सोचता हूं राग द्वेष को जीतने का एक ही उपाय अच्छा सा है, आसान सा, कि अपने विचारों को जो अशुभ होते हैं उनको शुभ की तरफ लगाओ। जितनी प्रवृत्ति करने की इच्छा है उतनी निवृत्ति की तरफ जाओ। अपने यहां तो प्रवृत्ति भी जो निवृत्ति की तरफ ले जाए उसे ही श्रेयस्कर माना। निवृत्ति मार्ग है मोक्ष का मार्ग, सो उसके अनुसार थोड़ी बहुत प्रवृत्ति करना पड़े तो कर लो, और जिस प्रवृत्ति करने में राग द्वेष बढ़ने लगे सो रुक जाओ, नहीं करने हमें भैया जी। अच्छा, अपन कहते हैं कि अपने आप से खुदरा नहीं ले, यानी अपने आप से राग द्वेष करने के लिए प्रयत्न मत करो। राग द्वेष के अवसर आ जावे तो उनको जीतने का प्रयास करो, नहीं जीत पाते तो कम से कम अपनी तरफ से उनको बढ़ाने का प्रयास तो नहीं करो कि आ बैल मुझे मार, वो सीधो खड़ो तो तुम वो खुदरा ले रहे, बेकार में सुल्ला ही वो है। जिसको अपन कहते कि झरे पूछे में कचरा फैलाना, तो भैया इतना तो कर लो कि अब भाई तो झारो है, अब तुम कचरा नहीं फैलाओ है। इतना तो अपने मन को अपन राग द्वेष से बचा सकते हैं, इतना तो त्यागी व्रती अभ्यास कर ही सकता है घर गृहस्थी के प्रपंच के बीच में भी। अपने विचारों को अपन अशुभ से शुभ की तरफ ले जाएं, असुहादो विनिवित्ति सुभे पवित्ति अजान चारित्तम। यही तो चारित्र है, यही तो अपनी निर्मलता के लिए प्रयत्न है, आचरण है कि मैं कम से कम अपने मन वचन काय का अशुभ उपयोग तो ना करूं, शुभ में ही लगूं। मेरा लक्ष्य तो शुद्ध है लेकिन अशुभ से तो बचूं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे अशुभ से तो बचना ही चाहिए। मेरा लक्ष्य शुभ की प्राप्ति नहीं है। जब शुभ और अशुभ में से मुझे चुनने मिले तो मैं शुभ को चुन लेता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य तो शुद्ध की प्राप्ति है। ऐसा विचार करके और अपने मन वचन काय को शुभ में लगाए रखें, उसको आज की भाषा में कहते कि भैया कम से कम पॉजिटिव थिंकिंग तो हो। थिंक पॉजिटिव, डू गुड। हम करें तो अच्छा करें, सोचें तो अच्छा सोचें। अगर इतना भी त्यागी व्रति जो चौथी प्रतिमा को धारण करने वाला है अपने पोषत उपवास के दिन इस तरह का विचार करें तो उसका पोषत उपवास सार्थक हो गया। अकेले चार प्रकार का भोजन त्याग कर देना और एक दिन पहले एक आसन और बाद में एक आसन कर लेना, ये तो है ही पोषत उपवास। लेकिन उसके साथ में करना क्या ऐसा स्वाध्याय जिससे कि मेरे आत्मा का स्वभाव मुझे मालूम पड़ जाए और ये सब संसार के प्रपंच इनसे मेरी विरक्ति हो जाए। जैसा अपना विचार होता है वैसा ही अपना जीवन बनता है और उस